चौथा खत। जनाब मिर्जा साहिब नमस्ते, आपका दो बार की मुरासला वरूद हुआ जिससे साफ तौर पर वाजे हुआ कि कुरान शरीफ मैज इब्राहिम मूसा व ईसा व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यूसुफ व लूत व सिकंदर व लुकमान के किस्साजात व फजूलियात से सरापा लबरेज है। मुझे दीरोदा खत की शरायत पर बहस करनी मंजूर है और आप सरियन हीला हवाला टाल मटाल हुज्जत अंगेजी कर रहे हैं। मिर्जा जी अफसोस अफसोस, आपको तस्फिया मंजूर नहीं है। किसी ने क्या सच कहा है, उजरे नामाकूल साबत में कुनान तकसीर रहा। अलावा बरा आप मसीह सानी है, दावा खुद को इस बात कर दिखाइए वरना बेहुदा शोर शर न मचाइए। लेख राम आजारिया समाज कादियान 9 बजे दिन के। पांचवा खत। मिर्जा साहेब कुंदन को इसके आगे एक शिकस्ता लफ्ज है जो पढ़ा नहीं जाता। अफसोस कि आप अस्पे खुद को अस्प औरों के अस्प को खच्चर करार देते हैं। मैंने वेदक के एतराज का अकल से जवाब दिया और आपने कुरानी एतराज का नकल से, मगर वो अकल से बसा बईद है। अगर आप फारिग नहीं तो मुझे भी काम बहुत है। अच्छा आसमानी निशान तो दिखावे, अगर बहस नहीं करना चाहते तो रब्बुल अर्श खैरुल माकिरीन से मेरी निस्बत कोई आसमानी निशान तो मांगे ता फैसला हो। लेख राम। यहां हजूर हाशी में फरमाते हैं, इस जगह लेख राम ने निशान मांगने के वक्त खुदा ताला का नाम खैरुल माकिरीन रखा और खुदा ताला के बारे में माकिर का लफ्ज इस सूरत में बोला जाता है कि जब वो बारीक असबाब से मुजरम को हलाक या जलील करता है। बस लेख राम के मुंह से खुद वो अल्फाज निकल गए जिनसे साबित होता है कि वो अपनी मौत का निशान मांगता था, यानी ऐसा निशान जिसके असबाब बहुत बारीक हों। सो खुदा की कुदरत है कि इसी तरह उसकी मौत हुई और ऐसे कातिल के हाथ से मारा गया जिसकी कार्रवाई हर एक को निहायत तअज्जुब में डालती है कि क्यों कर उसने ऐन रोजे रोशन में हमला किया और क्यों कर आबाद घर में हाथ उठाने की उसको जरूरत हुई और क्यों कर वो छुरी मारकर साफ निकल गया और फिर क्यों कर हिंदुओं की एक आबाद गली में बावजूद मकतूल के वारसों के शोर दुहाई के पकड़ा न गया। सो जब हम इन वाकियात को गौर से सोचते हैं तो फिर फौर तबीयत इस तरफ चली जाती है कि यही वो काम है जिसको खैरुल माकिरीन की तरफ मंसूब करना चाहिए। हम लिख चुके हैं कि खुदा का नाम कुरान शरीफ की रूह से खैरुल माकिरीन उस वक्त कहा जाता है कि जब वो किसी मुजरम मस्तूजबे सजा को बारीक असबाब के इस्तेमाल से सजा में गिरफ्तार करता है, यानी ऐसे असबाब उसकी सजा के उसके लिए मुहैया करता है जिन असबाब को मुजरिम किसी और इरादे से अपने लिए आप मुहैया करता है। बस वही असबाब जो अपनी बेहतरी या नामवरी के लिए मुजरिम जमा करता है वही उसकी जिल्लत और हलाकत का मूजब हो जाते हैं। कानून कुदरत साफ गवाही देता है कि खुदा का ये फेल भी दुनिया में पाया जाता है कि वो बाज़ औक़ात बेहया और सख्त दिल मुजरिमों की सजा उनके हाथ से दिलवाता है। सो वो लोग अपनी जिल्लत और तबाही के सामान अपने हाथ से जमा कर लेते हैं और उनकी नजर से वो उमूर उस वक्त तक मख्फी रखे जाते हैं जब तक खुदा ताला की कज़ा व कदर नाजिल हो जाए। बस इस मख्फी कार्रवाई के लिहाज से खुदा का नाम बाकिर है। दुनिया में हजारों नमूने उसके पाए जाते हैं। सो लेख राम के मामले में खुदा का मकर ये है कि अव्वल उसी के मुंह से कहलवाया कि मैं खैरुल माकिरीन से अपनी निस्बत निशान मांगता हूँ। सो इस दरख्वास्त में उसने ऐसा अजाब मांगा जिसके असबाब मख्फी हों और ऐसा ही वकू में आया, क्योंकि जिस शख्स को शुद्ध करने के लिए उसने अतवार का दिन मुकर्रर किया था और अतवार के दिन आरियों का खुशी का जलसा करार पाया था जैसा कि ईद का दिन होता है ता उस शख्स को शुद्ध किया जाए, सो वही खुशी के असबाब उसके लिए और उसकी कौम के लिए मातम के असबाब हो गए और खैरुल माकिरीन के नाम को खुदा ताला ने तमाम आरियों को खूब समझा दिया। अब वापस मतन की तरफ चलते हैं, सफा 115। इन तमाम खतूत के जवाब में मुफस्सल खत लिखे गए थे जिनका नकल करना इस जगह जरूरी नहीं। लेख राम की तबीयत में इफ्तरा और झूठ का मादा बहुत था, इसलिए वो बार बार अपने खतूत में लिखता है कि बहस नहीं करते, मुझे कोई निशान नहीं दिखलाते और माकूल जवाब नहीं देते। हालांकि बहस के लिए ये साफ तरीक उसके सामने पेश किया गया कि वो वेद की पाबंदी से और उसकी शुर्तियों के हवाले से बहस करे और हम कुरान शरीफ की पाबंदी से और उसकी आयतों के हवाले से बहस करे। बस चूंकि वो महज जाहिल था और ये भी उसमें ताकत नहीं थी कि हर एक मुकाम में वेद की शुर्ती पेश कर सके, इसलिए वो चालाकी से हमारे असल मुतालबे को तहरीर में ही नहीं लाता था, हाँ ठट्ठे और हंसी से बार बार आसमानी निशान मांगता था। गरज हम इस जगह अपना आखिरी खत नकल कर देते हैं जो उसके आखिरी रुके के जवाब में लिखा गया था और वो ये है, जनाब पंडित साहिब आपका खत मैंने पढ़ा, आप यकीनन समझें कि हमें ना बहस से इनकार है और ना निशान दिखलाने से, मगर आप सीधी नीयत से तलबे हक नहीं करते, बेजा शरायत ज्यादा कर देते हैं। आपकी जुबान बद जुबानी से रुकती नहीं। आप लिखते हैं कि अगर बहस नहीं करना चाहते तो रब्बुल अर्श खैरुल माकिरीन से मेरी निस्बत कोई आसमानी निशान मांगे। ये किस कदर हंसी ठट्ठे के कलमे हैं। गोया आप उस खुदा पर ईमान नहीं लाते जो बेबाकों को तंबीह कर सकता है। बाकी रहा ये इशारा कि खुदा अर्श पर है और मकर करता है, ये खुद आपकी नासमझी है। मकर लतीफ और मख्फी तदबीर को कहते हैं, जिसका इतलाक खुदा पर नाजायज नहीं। और अर्श का कलमा खुदा ताला की अजमत के लिए आता है, क्योंकि वो सब ऊंचों से ज्यादा ऊंचा और जलाल रखता है। ये नहीं कि वो किसी इंसान की तरह किसी तख्त का मोहताज है। खुद कुरान में है कि हर एक चीज को उसने थामा हुआ है, और वो कयूम है जिसको किसी चीज का सहारा नहीं। फिर जब कुरान शरीफ ये फरमाता है तो अर्श का एतराज करना किस कदर जुल्म है। आप अरबी से बेबहरा हैं, आपको मकर के माने भी मालूम नहीं। मकर के मफहूम में कोई ऐसा नाजायज अमर नहीं है जो खुदा ताला की तरफ मंसूब नहीं हो सकता। शरीरों को सजा देने के लिए खुदा के जो बारीक मख्फी काम है उनका नाम मकर है। लुगत देखो फिर एतराज करो। मैं अगर बकौल आपके वेद से उम्मी हूं तो क्या हर्ज है, क्योंकि मैं आपके मुसल्लम उसूल को हाथ में लेकर बहस करता हूं, मगर आप तो इस्लाम के उसूल से बाहर हो जाते हैं, साफ इफ्तरा करते हैं। चाहिए था कि अर्श पर खुदा का होना जिस तौर से माना गया है अव्वल मुझसे दरियाफ्त करते, फिर अगर गुंजाइश होती तो एतराज करते, और ऐसा ही मकर के माने अव्वल पूछते फिर एतराज करते। और निशान खुदा के पास है, वो कादिर है जो आपको दिखलावे। वस्सलामु अला मन तबअल हुदा। खाकसार मिर्जा गुलाम अहमद। और वो मुआदा जो निशानों के देखने के लिए साकिम और लेखराम के माबैन तहरीर पाया था, इसका अनुमान जो लेखराम ने अपने हाथ से लिखा था ये है, ओम परमात्मा ने नम है सचदान स्वरूप परमात्मा, सत का प्रकाश कर और असत का नाश कर, ताकि तेरी सत वेद विद्या सब संसार में परमरत हुए। यहां जो फरमाते हैं ये शर्त जो लेखराम इस्लाम को कबूल करे, ये उस वक्त की शर्त है जबकि कुछ मालूम ना था कि जो पेशगोई खुदा ताला की तरफ से होगी उसका मजमून क्या होगा। फिर बाद इसके इस तूल तवील मुआदे का खुलासा ये है कि अगर कोई पेशगोई लेखराम को बतलाई जाए और वो सच्ची ना हो तो वो हिंदू मजहब की सच्चाई की दलील होगी, और फ्रीक पेशगोई करने वाले पर लाजिम होगा कि आर्या मजहब को इख्तियार करे या 360 रुपया लेखराम को दे दे, जो पहले से शर्मपत साकिन कादियान की दुकान पर जमा करा देना होगा। और अगर पेशगोई करने वाला सच्चा निकले तो इस्लाम की सच्चाई की ये दलील होगी और पंडित लेखराम पर वाजिब होगा कि मजहब इस्लाम कबूल करे। यहां हुजूर हाशिम में फरमाते हैं, ये लेखराम ने पेशगोई के अंजाम के लिए दुआ की थी कि अगर इस्लाम सच्चा है तो उनकी पेशगोई सच्ची निकले, और अगर हिंदू मजहब सच्चा है तो उनकी पेशगोई जो करेंगे झूठी निकले। अब हम नाजरीन से पूछते हैं कि अगर इस लेखराम वाले पेशगोई को झूठी समझा जाए तो किस फरीक पर इस दुआ का बद असर पड़ेगा। फिर बाद इसके वो पेशगोई बतलाई गई जिसकी रूह से 6 मार्च 1897 को लेखराम की जिंदगी का खात्मा हुआ, लेकिन पहले इससे जो वो पेशगोई लेखराम पर जाहिर की जाती मुकर्रन बदरिया इश्तिहार 20 फरवरी 1886 को इत्तला दी गई थी कि अगर इनको पेशगोई के जाहिर करने से रंज पहुंचे तो इसको जाहिर ना किया जाए, मगर लेखराम ने बड़ी शोखी और दिलेरी से, जैसा कि इश्तिहार 20 फरवरी 1893 में इस बात का जिक्र है, एक कार्ड अपना दस्तखत ही मेरी तरफ रवाना किया कि मैं आपकी पेशगोइयों को वाहियात समझता हूं, मेरे हक में जो चाहो शाया करो, मेरी तरफ से इजाजत है और मैं कुछ खौफ नहीं करता। इस पर भी हमारी तरफ से बड़ी तवक्कुफ हुई, और नीज ये बायस हुआ कि अभी खुदा ताला की तरफ से मुझ पर पेशगोई की मियाद नहीं खुली थी, और लेखराम का इसरार था कि मियाद की कैद से पेशगोई बतलाई जाए। आखिर 20 फरवरी 1893 को बहुत तवज्जो और दुआ और तजर्रो के बाद मालूम हुआ कि आज की तारीख से यानी 20 फरवरी 1893 से 6 वर्ष के दरमियान लेखराम पर अजाब शदीद जिसका नतीजा मौत है नाजिल किया जाएगा, और उसके साथ ये अरबी इल्हाम भी हुआ, इजलुन जसदुल लहू ख्वार लहू नसब व अजाब, यानी ये गौशाला बेजान है जिसमें से मोमल आवाज आ रही है, बस इसके लिए दुख की मार और अजाब है। और इस इश्तिहार के सफा 2 और 3 में ये इबारत है, अब मैं इस पेशगोई को शाया करके तमाम मुसलमानों और आर्यों और ईसाइयों और दीगर फिरकों पर जाहिर करता हूँ कि अगर इस शख्स पर 6 वर्ष के अरसे तक आज की तारीख से यानी 20 फरवरी 1893 से कोई ऐसा अजाब जो मामूली तकलीफों से निराला और खारिक आदत हो, यानी जो अवारिज और बीमारियां इंसान के लिए तबई और मामूली हैं, जिनसे इंसान कभी सेहत पाता और कभी मरता है, उनमें से ना हो और अपने अंदर इलाही हैबत रखता हो, यानी इलाही कहर के निशान उसमें मौजूद हों, नाजिल ना हो, तो समझो कि मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं और ना उसकी रूह से मेरा ये नुतक है, यानी मेरे सिद्क और किज़्ब का मदार यही पेशगोई है। और अगर मैं इस पेशगोई में काज़िब निकला तो हर एक सजा के भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ और इस बात पर राजी हूँ कि मुझे गले में रस्सा डालकर सूली पर खींचा जाए। 20 फरवरी 1893। इस जगह मुनसिफ सोचे कि दर सूरत रो निकलने इस पेशगोई के किस जिल्लत के उठाने के लिए मैं तैयार था और अपने सिद्क और किज़्ब का किस दर्जे पर इस पेशगोई पर असर किया गया था। फिर वो लोग जो खुदा की हस्ती को मानते और इस बात को जानते हैं कि उसके इरादे के नीचे सब कुछ हो रहा है और हर एक झगड़े का आखिरी फैसला उसके हाथ से होता है, वो क्यों कर कह सकते हैं कि ऐसा अजीम शान मुकदमा जिसके नतीजे की दो बड़ी बाहरी कौमें मुंतजर थीं, वो खुदा के इल्म और इरादे के बगैर यूं ही इत्तेफाकी तौर पर जोर में आ गया। गोया जो मुकदमा खुदा को सौंपा गया था वो बगैर उसके जो उसके फैसला करने वाले फरमान से मुजयन हो यूं ही उसकी लाइल्मी में दाखिल दफ्तर हो गया। अगर ऐसे ख्यालात भरोसा करने के लायक हैं तो फिर तमाम नबूवतों का सिलसिला और शरीयतों का तमाम निजाम एक दफा दरहम बरहम हो जाएगा, क्योंकि जो अमर तहदी के बाद और इस कदर इसरार के दावे से पीछे दुश्मन के मुकाबले आसमानी गवाही के तौर पर जहूर में आ गया और नहायत रोशन तौर पर मुकर्रर करदा इलामतों के मुवाफिक उसका जहूर हुआ, अगर वही बेहुदा और बातिल समझा जाए तो फिर कहाँ का मजहब और कहाँ की खुदा की हस्ती, बल्कि तमाम आसमानी सच्चाइयों का एक दफा खून हो जाएगा।